परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
धन्य है वो जो दयावान है, उन पे की जाएगी दया। दयावान है उन पे की जाएगी दया। जिनके शुद्ध है मन वो, जिनके शुद्ध है मन वो परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, पुत्र वो कहलाए। वो जो मेल मिलाप कराए, प्रभु के पुत्र वो कहलाए। प्रभु के कारण जाए सताए, प्रभु के कारण जाए सताए, स्वर्ग का राज्य वो पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, करो इनका पालन। धन्य है वो जो मन के दीन है, धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन, होगा धन्य जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं, और इतना ही नहीं अपने उन आशीषों को लिखकर हम तक पहुंचाते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि आप सब भी जब इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो इसे अपने मित्रों को बताएं और उन आशीषों को हमें लिख भेजें, ताकि हम सब मिलकर आपके उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों हम सब रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि दुर्बल विश्वासी भाई के प्रति हमारा आचरण ऐसा हो कि उसे ठोकर न लगे, वह विश्वास में जैसा उचित जीवन जीना चाहता है उसे जीने दें। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम निंदा का कारण बने। तो मित्रों आज हम इसे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हमें ये जीवन दान देते हैं ताकि हम आपकी खोज में रह सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, उन पर अपने अनुग्रह दें ताकि आज जो कुछ भी हम सब सीखते हैं निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं और किसी न किसी प्रकार के तनाव में उलझे हुए हैं, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, आप उनकी सुधि लें और सहायता प्रदान करें। इस समय फिर से हम सबको इस अध्ययन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 18 पद में, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। जी हाँ, यद्यपि इस पृथ्वी पर यथार्थ में प्रभु का राज्य होगा, वह आत्मिक राज्य की चर्चा कर रहा है जिसमें आप नया जीवन पाकर ही प्रवेश कर पाते हैं। प्रियो, मसीह की सेवा खाने पीने से नहीं, धर्म, शांति और पवित्र आत्मा में आनंदित रहने से होती है। इन बातों के कारण विश्वासी परमेश्वर को भावता और मनुष्य में स्वीकार्य होता है। लिखा है मनुष्य में ग्रहण योग्य, इसका अर्थ मानवीय प्रशंसा और विश्वासी होने के कारण सराहना नहीं है। वे संभवतः आपको सताएंगे भी, परंतु मन में वे एक सच्चे विश्वासी को ग्रहण भी करेंगे, परंतु वे स्वांग और बाहरी दिखावे को अस्वीकार भी करेंगे। मेरे प्रियो, यह आचरण का एक महान सिद्धांत है। विश्वासी के वचन और आचरण परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो और मनुष्य के विवेक द्वारा अनुशासित हो। आइए हम आगे पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 14 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। जी हाँ, यह दोहरा प्रबोधन है, हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। उत्सुकता से इस कार्य को करो। एक विश्वासी को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि वह विश्वासी भाई को ठोकर खिलाने वाले भोजन को न खाए या शारीरिक कार्य को न करे। यह प्रबोधन का नकारात्मक पक्ष है। मेरे मित्रों, सकारात्मक पक्ष है कि आत्मिक बातों की खोज में लगे रहो। धर्म, शांति और आत्मिक आनंद, ये गुण विश्वासी का निर्माण करते हैं। रोमियों के पत्र 14 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। ध्यान दीजिए, भोजन के कारण परमेश्वर के कार्य को व्यर्थ न होने दे। निसंदेह विश्वासी स्वतंत्र है कि क्या खाए और क्या ना खाए, परंतु दोनों में से एक भी उसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बनाएगा। हमें दुर्बल विश्वासी के मन में परमेश्वर के कार्य का नाश नहीं करना है। हमारी संतुष्टि से उसे ठोकर न लगाएं। यह कहावत सच होती है कि एक भोजन दूसरे के लिए विष होता है। उदाहरण से देखेंगे, एसाव के मन में परमेश्वर और उसकी पहलौठे के अधिकार का मान नहीं था। उसने खाने के बदले अपने पहलौठेपन को दे दिया, अर्थात अपना पहलौठापन का अधिकार बेच दिया अपनी भूख मिटाने के लिए। अपना अधिकार उसने खो दिया। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। मेरे मित्रों, अब पौलुस खाने और पीने पर लौट आता है, वरन उसके परे विवाद करता है। न और कुछ अर्थात जिसके प्रति किसी दुर्बल भाई के मन में शंका हो, जहां तक विवेक का प्रश्न है, दुर्बल भाई दृढ़ विश्वासी के लिए गलत हो जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारा भाई दुर्बल है या नहीं। आइए हम आगे देखेंगे विवेक पद 22 मसीही आचरण का दूसरा महान सिद्धांत सुझाता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। मेरे मित्रों, मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ, तेरा जो विश्वासी है वह तू परमेश्वर की दृष्टि में बनाए रख। धन्य है वह पुरुष जो विवेक द्वारा ठीक समझी हुई बात को करने में अपने आप को दोषी न ठहराए। मेरे प्रियो, यह विश्वासियों के आचरण का दूसरा सिद्धांत है। वह बोधिकरण के विषय चर्चा कर चुका है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो स्वयं से पूछते हैं, क्या मेरे लिए यह करना उचित होगा? क्या मैं उत्साह और प्रत्याशा और आनंद के साथ कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर में वह जोश है? यह दूसरा प्रबोधन पूर्व के कामों में तौलता है। धन्य है वह पुरुष जो अपने विवेकी कार्यों के लिए, अपनी सोच के कार्यों के लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। मेरे मित्रों, विश्वासी का विवेक ऐसा शुद्ध हो कि वह अपने पूर्व के आचरण को बिना अपराध बोध और आत्मग्लानी के देख पाए। मैं एक उदाहरण देता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। मुझसे किसी ने पूछा, क्या एक विश्वासी बहुत शराब पी सकता है? मैंने कहा हाँ। लूका अध्याय 15 में उड़ाव पुत्र बहुत दूर प्रदेश में था। मुझे पूरा विश्वास है कि वह अन्य अनाचारों के साथ शराब का नशा भी कर रहा था, तथापि वह पुत्र ही था। तब उसमें और सुअरों में क्या अंतर था? अंतर यह था कि सुअरों में से किसी ने नहीं कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, परंतु उन सुअरों के मध्य उपस्थित उड़ाव पुत्र ने कहा, मुझे यहाँ रहने से घृणा आती है, मैं बाहर निकलूंगा, मैं अपने पिता के पास जाकर के कहूंगा कि मैंने पाप किया है। जी हाँ, अब एक पीने वाले विश्वासी और पीने वाले अविश्वासी में क्या अंतर है आप देख सकते हैं। अंतर केवल यह है कि अविश्वासी सुबह सिर दर्द लेकर उठेगा और सोचेगा, बड़ा मजा आया, आज मैं पूरा शहर रंग दूंगा। परंतु परमेश्वर की संतान क्या करेगी? वह सुबह सिर दर्द लेकर उठेगा और रोते हुए परमेश्वर से कहेगा, हे प्रभु, मुझे स्वयं से घृणा आती है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कदापि इसे नहीं छूंगा। वह परमेश्वर के समक्ष पाप का अंगीकार करेगा। मेरे मित्रों, अब रोचक बात तो यह है कि उड़ाव पुत्र दोबारा सुअरों के बाड़े में नहीं पहुंचा। उसे वहां का वातावरण अच्छा नहीं लगा। अविश्वासी और विश्वासी में यही एक महान अंतर है। धन्य है वह पुरुष जो विवेकी बातों में स्वयं को दोष नहीं देता है। मेरे मित्रों, क्या आप अपने अतीत को देखकर अपने कामों के कारण स्वयं से घृणा करते हैं? क्या आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है? चाहे काम कैसा भी क्यों ना रहा हो, चाहे सब काम करते भी हो, आपके लिए वह गलत है। आप शायद आराधना में उपस्थित थे। आराधना एक संकटकालीन स्थान हो सकती है, क्योंकि शैतान हर रविवार वहां जाता है। वह सबसे अच्छी कलीसियाओं में उपस्थित रहता है। क्या आप आराधना के बाद घर आकर कहते हैं, काश मैंने यह न कहा होता? आपको ऐसा कहना नहीं था। धन्य है वह पुरुष जो अपने किए पर न पछता है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। मेरे प्रियो, आपको अपने कामों पर भरोसा होना है, अन्यथा आप न करें। यहाँ विश्वासी के लिए पाप की नई परिभाषा है। विश्वास से जो काम उत्पन्न न हो वह पाप है। संदिग्ध विषयों के बारे में यह पवित्र आत्मा का उत्तर है। जिस प्रकार विश्वासी विश्वास के द्वारा उद्धार पाता है, उसी प्रकार उसका चाल चलन भी विश्वास आधारित होना है। जी हाँ, यह सच है, जैसा हम करते हैं उसके अनुसार ही हमें चलना है। यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 15 से अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय होगा दुर्बल भाई को सहन करना, यहूदियों और अन्य जातियों का एक देह में संगठन और पौलुस की गवाही। मेरे मित्रों, हम विश्वासियों के चाल चलन के बारे में देख रहे थे और पिछले अध्याय में हमने इस संबंध में दो सिद्धांत देखे, अपराध बोध और विवेक। अब हम तीसरा सिद्धांत देखेंगे, दुर्बल भाई को सहन करना। यह विचार अध्याय 14 ही से संयोजित है। प्रथम तीन पदों के विषय में संबंध विच्छेद तदुपरांत आता है। यहूदियों और अन्य जातियों का परमेश्वर की महिमा के निमित्त एक देह में सुदृढ़ीकरण और अंत में पौलुस की अन्य जातियों और विशेष करके रोमियों में प्रेरिताई अर्थात व्यक्तिगत सेवा और ब्यौरा। यह अध्याय रोमियों की पत्री का प्रमुख विवाद का समापन करता है। अंतिम अध्याय में पौलुस निजी संबंधों की चर्चा में लौट आता है। मेरे मित्रों, यहाँ यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि उच्च आलोचना में अंतिम दो अध्यायों पर संदेह किया जाता है कि वे पौलुस के लिखे नहीं हैं। उनके पास इसका उचित कारण और दस्तावेज नहीं थे, परंतु आज यह सिद्ध हो चुका है कि ये अध्याय पौलुस के द्वारा लिखी गई है। इसी पत्री का यह भाग है। अतः केर के कथन को संदर्भित करते हैं। वो कहता है, इन आपत्तियों के उपरांत भी पत्री की जो समग्रता आज है वह निश्चित ही है। मेरे प्रियो, आइए अब हम देखेंगे दुर्बल भाई को सहन करना। रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यह तीसरा और अंतिम मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसके द्वारा मसीही आचरण नियंत्रित होना है। किसी विश्वासी भाई को अपने घर आमंत्रित करें तो उसके नाचने पर वाद्य न करें। हो सकता है कि नाचना आपकी समझ में गलत नहीं है। मैं तो नाचने को अनुमति नहीं देता। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जिन्हें मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि मुझे अन्यों के कारण नहीं करना है। न ही मैंने वर्षों से कोई सिनेमा देखा है। मुझे तो यह भी स्मरण नहीं कि अंतिम बार मैंने सिनेमा हॉल में कब प्रवेश किया था। मेरे मित्रों, अब कोई कहेगा, आप तो उन पृथक वासियों में से हैं जो सिनेमा देखने के पक्ष में नहीं है, आप जा सकते हैं। मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। इसका एक कारण तो हमारे सामने है ही, दुर्बल भाई को सह लो। हम बलवानों को उनके लिए सहने के लिए कहा गया है। यह मैं हूं। मैं सोचता हूं कि मैं प्रभु की संगति में त्यागे बिना जा सकता हूं। आपसे सच कहता हूं कि इन सिनेमा घरों में से अधिकांश मुझे उबा देते हैं। मेरा यह कार्य किसी दुर्बल भाई पर कुप्रभाव डालेगा और सिनेमा के प्रभाव से मसीह के साथ उसका संबंध नष्ट हो जाएगा। अतः हम जो बलवान हैं अपने दुर्बल भाइयों को सह लें। मित्रों, यहां पर बलवान और दुर्बल भाइयों के विषय में कही गई है। यह शारीरिक बलवान और दुर्बलता के विषय में नहीं, परंतु हमारे विश्वास के बारे में है। यदि आपका भाई कोई विश्वास में कमजोर है तो उसके कारण आप ऐसा न करें जिससे वह अपने विश्वास में और कमजोर हो जाए और भटक जाए। पौलुस के कहने का मतलब यही है। मेरे मित्रों, पौलुस अपने आप को बलवानों के साथ गिनता है और वह बल देकर कहता है कि उन्हें दुर्बल भाइयों की भावनाओं और अंधविश्वास को सहन करना चाहिए। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 8 अध्याय उसके 13 पद में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। दूसरे शब्दों में पौलुस कहता है कि मैं मांस खा सकता हूँ, मुझे मांस खाना अच्छा लगता है, परंतु यदि मेरे भाई को ठोकर लगे तो मैं नहीं खाऊंगा। जी हाँ, पौलुस ने यह भी लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 24 पद में, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे, दूसरों की रुचियों पर ध्यान दे। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 2 पद में पौलुस लिखता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रत्येक एक दूसरे की चिंता करे और जो कमजोर है उसको सहन करे और उसे भी विश्वास में बढ़ाए। रोमियों की पत्री 15 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। मित्रों, ध्यान दीजिए, भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, किसी की उन्नति के विचार से। मेरे प्रियो, मसीही आचरण का उद्देश्य है कि पड़ोसी की उन्नति हो, परंतु पड़ोसी के पतन और हानि के निमित्त उसे प्रसन्न न किया जाए। हम पहला कुरिन्थियों की पत्र 9 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पाते हैं, जहां पर पौलुस लिखता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। पौलुस के मन्नत मानने के कारण अनेक जन उसकी आलोचना करते हैं। वे समझते नहीं कि उसने मन्नत क्यों मानी थी। प्रियो, सिर क्यों मुड़ाया था उसने, मंदिर क्यों गया? यदि आप समझ पाए कि पौलुस यहाँ क्या कहता है, तो आप भी समझ पाएंगे कि उसने मन्नत क्यों मानी थी। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि हम अब भी संदिग्ध बातों के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं, वे बातें जिन्हें धर्मशास्त्र वर्जित नहीं करता है। क्या मैं सिनेमा देखने जाऊं? जी हाँ, यदि मैं सोचता हूं कि ऐसा करने से मैं किसी को मसीह में ला सकता हूं, तो आप अवश्य जाएं। कोई पूछेगा, ऐसा आप कब तक कर सकते हैं? मैं एक ऐसे समूह को जानता हूं जो किसी व्यंग्यात्मक नाटक में गवाही देने के लिए गए। मेरे विचार में वे गलत स्थान में थे। मैं एक युवती को जानता हूं जो रात्रि क्लब में जाती थी और अपने मित्रों के साथ शराब पीती थी, और वह सोचती थी कि इसके द्वारा से वह उन्हें एक संगति दे पाएगी, परंतु वह अंत में एक शराबी बन गई और एक को भी मसीह में ना ला पाए। मित्रों, मैं आपको धर्मशास्त्र से दिखा सकता हूं कि ये बातें गलत हैं। आप गलत काम करके किसी को मसीह में नहीं ला सकते, क्योंकि यह हो ही नहीं सकता है। इससे किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है, इसलिए आप ऐसा कभी न करें। यद्यपि धर्मशास्त्र आज समाज के अनेक विषयों पर चुप है, हमें ये मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। पृथकीकरण के 3 सिद्धांत, पहला है बोधिकरण, आपको बोध होता है, हम जो भी करें उत्साहपूर्वक करें, क्योंकि हमने निश्चय किया है कि यही परमेश्वर चाहता है कि हम करें। दूसरा है विवेक, हमारा आचरण ऐसा हो कि बाद में देखें तो आत्मग्लानी न हो। तीसरा है सह लेना, हमें दुर्बल भाइयों की भावनाओं और अंधविश्वास को सहन कर लेना चाहिए और उन्हें उत्साहित करना है। हम रोमियों के पत्र 15 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। मेरे प्रियो, यह संदर्भ भजन संहिता 69 के 9 पद का है। यह श्राप का भजन तो है, परंतु मसीह के बारे में भी एक महान भजन है। मसीह ने अपने हित और सुख को कभी प्राथमिकता नहीं दी थी। स्टेफलर के विचार में मसीह यहाँ एक उदाहरण की अपेक्षा तर्क स्वरूप रखा गया है। वह अपनी पुस्तक एपिस्टल टू द रोमन्स पृष्ठ संख्या 250 में लिखते हैं, धर्मशास्त्र का उद्देश्य मसीह को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो उदाहरण द्वारा उद्धार पाता है और न ही पवित्र किया जाता है। मसीह जब भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वह सदैव परमेश्वर के मोक्षक अनुग्रह के संबंध में है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि मैं और आप उद्धार प्राप्त करें। उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, अपने उस पवित्र लहू को मेरे पापों के बदले में, आपके पापों के बदले में दे दिया, बहा दिया। वह मेरे लिए मरा, वह आपके लिए मरा, ताकि आप उद्धार को प्राप्त करें। आपको किसी प्रकार की सजा अब नहीं होगी, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे तब। आज क्या आपने इस बात का अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति आपसे इतना प्रेम करता है जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी? मेरे मित्रों, आज पौलुस यही कहता है कि हम अपने दुर्बलों को, अपने कमजोर लोगों को विश्वास में मजबूत बनाएं, उन्हें साहस दिलाएं, उन्हें स्थिर करें। आज आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? क्या आपके जीवन से लोगों को ठोकर मिलती है, या आपके जीवन से लोगों को आशीष मिलती है? मित्रों, आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है और एक सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस समय अपने सामर्थ्य परमेश्वर की निकटता में आएं। अपने हरेक गुनाहों को, हमारे पापों को हम उसके सामने में मान लें और उससे कहें कि हे प्रभु, मैं अपने पापों को आज आपके सामने में मान लेता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं पापी हूँ। मैं यह भी नहीं जानता था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं नहीं जानता था कि आप मेरे बदले में इतने कष्टों को उठाए और आप मर गए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें इस बात को स्मरण कराया है कि हमें अपने जीवन में दूसरों को उत्साहित करना है। इतना ही नहीं, अपने विवेक के द्वारा से और अपने बोध के द्वारा से और सहन करने के द्वारा से एक दूसरे की सहायता करनी है। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में भी आप आ जाइए, मुझसे बातचीत कीजिए। मैं इस जीवन में आपके लिए एक नया रूप में जीना चाहता हूँ, आपके बारे और अधिक जानना चाहता हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी आदतों से, शराब से, तंबाकू से और हर एक प्रकार के इन नशे की आदतों से आप मुझे छुटकारा दीजिए। पिता परमेश्वर, इस समय फिर से हम अपने आप को, हम में से हर एक को आपके निकटता में लाते हैं। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे उन हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय साथ में अपने हृदय में इस बात को महसूस कर रहे हैं। आप उनके जीवन से बातचीत करें, उनके जीवन में कार्य करें और होने दे प्रभु कि ये समय निश्चित रूप में उनके जीवन के लिए एक निर्णय का समय हो। हाँ प्रभु, इस समय फिर से हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को आपके निकटता में लाते हैं। उनकी प्रार्थनाओं का, उनकी आशाओं का, उनकी वेदनाओं का आप आदर करें और उनकी सहायता करें। आपने ऐसा किया है इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप उनकी सहायता कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और हम अगले अध्ययन में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दूसरों की सहायता करें और इस कार्यक्रम के बारे उन्हें भी अवश्य बताएं, ताकि वे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ।